ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छठा स्कंद है और 17वां अध्याय, श्लोक नंबर है 28। छठा स्कंद अध्याय नंबर 17, श्लोक नंबर 28। ये वो कहानी चल रही है कि महाराज, आवाज थोड़ा ये हो रहा है, रंबलिंग हो रहा है। महाराज चित्रकेतु को पार्वती देवी शाप देती है, ये वाला प्रसंग चल रहा है। आवाज क्लियर है श्रीधर प्रभु? ओके। ये बहुत ही फेमस श्लोक है। आज जो श्लोक चुना गया है ये हमारे गौड़ीय परंपरा में एक इम्पोर्टेंट श्लोक माना गया है, जो वैष्णव के लक्षण का वर्णन करता है। ठीक। नारायणा परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्ग पवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। इसका शब्दार्थ है नारायण परः, जो केवल नारायण की सेवा में रुचि रखते हैं, शुद्ध भक्त, सर्वे समस्त, न नहीं, कुतश्चन कहीं भी, बिभ्यति डरते हैं, स्वर्ग स्वर्ग लोक, अपवर्ग मुक्ति, नरकेशु तथा नरक में, अपि भी तुल्य समान, अर्थ महत्व, दर्शिना देखने वाले। इसका हिंदी में अनुवाद है, जो पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में लगे हुए हैं, भक्त हैं, वो किसी भी अवस्था में डरते नहीं हैं। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति और नरक तीनों बराबर होते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की सेवा में ही रुचि रखते हैं। तात्पर्य ये स्वाभाविक है कि पार्वती ने पूछा हो कि भक्त इतने महान कैसे बन गए। ये पार्वती और शिव जी का वार्तालाप चल रहा है, तो पार्वती शिव जी से पूछेंगे कि ये चित्रकेतु महाराज इतने बड़े भक्त कैसे बन गए। इस श्लोक में बताया गया है कि भक्त लोग नारायण पर होते हैं, वे जीवन की विफलताओं की परवाह नहीं करते, क्योंकि नारायण की सेवा करते हुए उन्हें सब प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षा पाई है। उन्हें इसकी परवाह नहीं रहती कि वह स्वर्ग में है या नरक में है, वे केवल ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, यही उनकी श्रेष्ठता है। अनुकूले न कृष्णानुशीलनम, वे मुक्त रूप से ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं। शिवजी ने भृत्य भृत्यानाम शब्द का व्यवहार करके यह संकेत किया है, यद्यपि चित्रकेतु ने सहिष्णुता दिखाई है, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता और श्रेष्ठता दिखाई है, किंतु जितने भी भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण की है वे सभी यशस्वी हैं। उन्हें इनकी तनिक भी इच्छा नहीं है कि वह स्वर्ग में रहें, सुखी हों और मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हों, ऐसा लाभ उनको नहीं भाता, वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितमश्च नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जोर से बोली हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा। सब भक्तों के चरणों में वंदना करते हुए मैं कुछ सेवा करने का प्रयास करूंगा। स्पेशली वृंदावन के धाम में जो महात्मा निवास कर रहे हैं, जिनको राधा श्याम सुंदर की विशेष कृपा मिली है। कई लोगों को शॉर्ट टर्म वीज़ा मिलता है, किसी को लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता है वृंदावन में। शॉर्ट टर्म वीज़ा मतलब 3 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। लेकिन जो भाग्यशाली हैं राधा मोहन प्रभु की तरह, उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाता है, कई वर्षों के लिए या अनंत काल के लिए। स्पेशली ये पुरुषोत्तम मास में ब्रजधाम में निवास करना बहुत, इसकी बहुत महिमा बताई गई है। ये पुरुषोत्तम मास जो है, ये भक्ति से, भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जित। जो चीज़ भक्ति में अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो भक्ति के लिए विरोधी है उसको ठुकरा देना चाहिए। तो स्पेशली इस महीने में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण करें। जैसे हम हर महीने 16 करते ही हैं, तो पुरुषोत्तम महीने में कई भक्त 32 माला करते हैं, कई 64 करते हैं। एक्स्ट्रा जपा, एक्स्ट्रा श्रीमद् भागवत का अध्ययन, चैतन्य चरितामृत पढ़ना, या परिक्रमा करना, या ज़्यादा सेवा करना, या ज़्यादा प्रसाद खाना, सभी इम्पोर्टेंट हैं इस पर्टिकुलर महीने में। तो ये पुरुषोत्तम महीने जो 3 साल में एक बार आता है, ये भक्ति के लिए बहुत पोटेंट है, बहुत शक्तिशाली है। तो मैं भी उसी लोभ से यहाँ पर हूँ, आप सब वैष्णव की कृपा से, कि यहाँ पर श्रीमती राधा रानी की कृपा मिल जाए। एक्चुअली ब्रज में रहने का मतलब क्या है, श्रील प्रभुपाद जी का एक फेमस लेक्चर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वॉट डज इट मीन टू स्टे इन वृंदावन, वृंदावन में रहने का मतलब क्या है। जिन लोग सोचते वृंदावन में रहना मतलब एक कमरा मिल जाए और बस 2 बार प्रसाद मिल गए तो राधे राधे, बस हो गया वृंदावन वास। लेकिन एक्चुअली वृंदावन वास का मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं, टू स्टे इन वृंदावन मीन्स टू टेक शेल्टर ऑफ वृंदावनेश्वरी। वृंदावन में वास करने का सही तरीका क्या है, वृंदावनेश्वरी राधा रानी का आश्रय लेना। श्रीमती राधा रानी जो भगवान श्याम सुंदर को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करना। जैसे हमारे आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी बोलते हैं, राधे जय जय माधव दयिते। ये सुंदर भजन में लास्ट लाइन में रूप गोस्वामी हमें इशारा करते हैं, हमें हिंट देते हैं कि कैसे वृंदावन धाम में रहना है। करुणा करु माई करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरित। हम वृंदावन में रहते हैं मतलब राधा रानी से कॉन्स्टेंटली प्रार्थना करना है, हे राधा रानी, हे वृंदावनेश्वरी, हे श्याम सुंदर भगवान, हे कृष्ण बलराम, करुणा करो भाई। हमें करुणा के लिए प्रार्थना करना। आज पूरे दुनिया में लोग कोरोना से डरे हुए हैं, है ना। कृष्णा कॉन्शियस नहीं, कोरोना कॉन्शियस हो गए हैं सब लोग, है ना। जहाँ बाहर निकलो सबको कोरोना, क्या हुआ भाई, पॉजिटिव कि नेगेटिव, क्या हुआ, सबको डर लगता है। और अगर कोई पॉजिटिव दिख गया तो लोग ऐसा डरते हैं कि जैसे कोई अछूत हो, यू नो, अरे पॉजिटिव पॉजिटिव, यू नो। तो ये जो जो भौतिक दुनिया का जो कोरोना का जो वायरस है वो बहुत डेंजरस है, उससे दूर रहना चाहिए, शुभ कृष्ण प्रभु की तरह मास्क लगाना चाहिए एटलीस्ट बाहर। लेकिन उससे ज़्यादा डेंजरस एक वायरस अभी अभी डिटेक्ट हुआ है ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर, अभी अभी समाचार मिला, और एक डेंजरस वायरस है, उसका नाम है माया वायरस, है ना। ये वायरस इस्कॉन में घुसने का प्रयास कर रहा है और कई भक्तों को आक्रमण भी कर लिया। और ये वायरस जब घुस जाता है तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, कितना काढ़ा पी लें, कितना गर्म पानी पी लें, कोरोनिल खा लें, वो वायरस निकलता नहीं। एक ही तरीका है कि वायरस को निकालने के लिए 16 इंजेक्शन लेने पड़ते हैं रोज। रोज सुबह उठते ही जैसे शुभ कृष्ण प्रभु की तरह जूम ग्रुप में हो या कहीं हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपने अच्छा वैक्सीन ले लिया है तो संभावना कम है, फिर भी वायरस आ सकता है, वैक्सीन लेने के बाद भी आ सकता है। और वैक्सीन लगाने का अच्छा समय है सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक, वैसे कभी भी लगा सकते हैं। और अगर ज़्यादा डोज ले लिया तो ज़्यादा इम्यूनिटी हो जाए। तो मैं हंसते हंसते बोल रहा हूँ लेकिन एक्चुअली सत्य है कि कितना हम डरते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं हो, स्पेशली कोरोना भयानक बीमारी है, उससे ज़्यादा डरना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर माया की बीमारी नहीं आ जाए, या अगर आ गई है तो निकल जाए। जैसे अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसके तरीके हैं, यू नो, भाप लेकर, ज़्यादा काढ़ा लेकर, और कुछ कुछ दवाइयाँ हैं। जैसे हमारा जिसने भी भौतिक दुनिया में जन्म लिया है 99% लोग पॉजिटिव हैं, कोरोना नहीं, माया पॉजिटिव। अगर मैं बोलूँगा कि कोरोना पॉजिटिव, लोग डर जाएंगे, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, वृंदावन में क्या हो गया। 99% नहीं, मटीरियल वर्ल्ड में ऐसा है। उसको जो ब्रजवासी हैं, जो भगवान के धाम में रह रहे हैं, तो उनके लिए तो ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो जो राधा रानी के चरणों में है। और आप सब वैष्णव भी जो प्रभुपाद की कृपा से ब्रज धाम में है, जनरली वृंदावन में रहने से इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि कोरोना का जो अटैक है कई दो व्यक्तियों को होता है, दोनों का पॉजिटिव भी हो जाता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी लेवल अच्छी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी लेवल कैसे बढ़ाते हैं लोग, कुछ सब्जियाँ लेकर, फ्रूट्स लेकर, जैसे डेंगू के लिए लोग वो ड्रैगन फ्रूट खाते हैं, एक स्पेशल फ्रूट होता है। तैसे ये चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवतम, हरि नाम हमें प्रचुर मात्रा में लेना है। हमें वेट नहीं करना है कि मुझे माया अटैक करेगी तभी मैं दवाई लूँगा, या हमें इतना ज़्यादा अपने आप को कृष्ण भक्ति में मग्न कर देना हमारी चेतना को कि हमें प्रभाव ही नहीं पड़े। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी I sometimes fall into माया, कभी कभी मैं माया में गिर जाता हूँ। और प्रभुपाद जी बोले, You are always in माया, sometimes you come out। अब हमेशा ही माया में। तो ये मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। और मेन चीज़ आज का श्लोक जो है बहुत ही अच्छा श्लोक है, सब डिवोटीज़ को बहुत प्रिय है। नारायणा परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्ग पवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। तो ये कथा आप सब जानते हैं, फिर भी स्वयं के शुद्धिकरण के लिए मैं बताऊँगा कैसे ये श्लोक आ रहे। महाराज चित्रकेतु बहुत बड़े राजा थे, 300 से ज़्यादा पत्नियाँ थे, बहुत ऐश्वर्य ठाट बाट में रह रहे थे, लेकिन फिर भी वो दुखी थे। भगवान ने ऐसे अरेंज किया है कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख लगा रहता है, सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मेरे को नाम नहीं पता, जो अमेज़ॉन के मतलब ओनर या टॉपर कुछ माने जाते हैं, और उनका भी वैवाहिक जीवन जो है वो असफल हो गया, डाइवोर्स हो गया। इतने बड़े अमीर व्यक्ति, आप सोचिए अमेज़ॉन कितनी बड़ी ई सेलिंग की कंपनी है, उनको भी दुख है। हमारे, मैं एक बार बम्बई में गया था, एक मिस्टर डाबर जो डाबर कंपनी के बड़े हैं, वो हमें अपना बंगलो दिखा रहे थे 5-6 माले का। मैंने उनसे पूछा, लेकिन रहता कौन है? बोले, मेरे बेटे तो मेरे को छोड़कर अमेरिका चले गए, बस मैं अपने पत्नी के साथ रहता हूँ। मतलब 5 माले हैं, आप कौन से माले पे रहते हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर को एक माले पे रखा, हाथ को नीचे रखा, सोने के लिए तो वही चाहिए। और वो बहुत दुख में बोलने लगे कि मैं डिप्रेशन में हूँ। आजकल डिप्रेशन एक बहुत भयानक बीमारी है, ऐसे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मानसिक बीमारियाँ जो हैं ये सदी में और बढ़ने वाले हैं। शारीरिक बीमारी से ज़्यादा डेंजरस मानसिक बीमारी होती है, कि शरीर बीमारी में तो पता होता है, हम दवाई ले सकते हैं, मानसिक बीमारी में पता भी नहीं होता, और उससे पूरी चेतना भक्ति करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भक्त के लिए उसको पता होता है, जैसे आज के श्लोक में बताया गया कि बस भगवान है, न कुतश्च न बिभ्यति। तो चित्रकेतु महाराज अभी भक्त नहीं थे या शुद्ध भक्त नहीं थे, तो उनके मन में बड़ा दुख था। और आप कथा जानते हैं कि नारद मुनि आए, नारद मुनि से आशीर्वाद मांगा कि मेरे को पुत्र प्राप्त हो। मेटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज़ सुख देती है बाद में वो दुख देती है। ये जैसे जैसे क्वाइन देखते हैं हम, सिक्का, उसमें हेड्स और टेल होता है, एक छापा और एक काटा, ऐसे मटेरियल वर्ल्ड का स्वभाव है। जहाँ पे थोड़ा सुख होगा पीछे दुख लगा होगा, अटैच फाइल के रूप में आता है, पता ही नहीं चलता। जैसे कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर होता है उसको आप ऑन करते हैं तो उसमें एक वायरस होता है, वो आपके सिस्टम को ख़राब कर देता है। ऐसे भगवान ने बनाया है दुनिया को। तो चित्रकेतु महाराज अच्छा आशीर्वाद मांगते हैं, है ना, एक पुत्र तो होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं वो पुत्र प्राप्त होने के बाद वो इतने खुश हुए। नारद मुनि ने बताया था उसके बेटे का नाम हर्ष शोक, हर्ष भी होगा शोक भी होगा। और इतने खुश थे कि भागवत में लिखा गया कि वो अपने चलते चलते आनंद के कारण बेहोश जाते थे, गिर पड़ते थे। आपको कभी ऐसा हुआ है कि आप खुशी से गिर गए, है ना, मान लो राजभोग मिल गया, मंगल भोग, है ना, रसगुल्ला और स्वीट, थोड़ी खुशी हुई लेकिन गिर नहीं जाएंगे, इतने एक्सटेसी में थे। और फिर आप जानते हैं कैसे उनकी पत्नी, अभी उनके बहुत सारे पत्नियाँ थे और एक को पुत्र हुआ दूसरे को नहीं हुआ, तो नेचुरली ईर्ष्या पैदा हो जाती है और फिर उनके पुत्र को जहर दे के मार दिया गया। और तब वो इतने दुखी हुए कि चलते चलते गिरने लगे। दूसरी ओर हम भक्त को देखते हैं, कंपेयर करिए, चित्रकेतु महाराज जब तक इस्कॉन में नहीं आए, मतलब भक्ति में नहीं आए, वो दुखी हो गए पुत्र की मृत्यु। ऐसे ही एक गौरंग महाप्रभु की लीला में एक और भक्त हैं जिनके भी पुत्र की मृत्यु हो गई थी, वो कौन है, श्रीवास ठाकुर। अभी श्रीवास ठाकुर के भी पुत्र की मृत्यु हो गई। श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन चल रहा था, स्वयं महाप्रभु नित्यानंद सारे भक्तों के साथ उत्साहपूर्वक गा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब इतने उत्साह में कीर्तन हो रहा है और उनकी पत्नी को समाचार मिला, वो दुख में रोने लगे। जब श्रीवास को पता चला तो उनको भी दुख हुआ। ऐसा नहीं कि वो पाषाण हृदय के हैं, पत्थर के हैं, लेकिन उन्होंने पत्नी को बोला, देखो ये कितना मंगलमय समय है, स्वयं गौर हरि शचि नंदन महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, इतने सारे भक्त हैं, स्वयं नाम के रूप में भगवान हैं। ऐसे समय जब किसी की मृत्यु होती है तो उसको बहुत अच्छी गति होती है। मैं भी सोचा था आज गुरु पूजा में एक्स्टेटिक डांसिंग हो रहा है, मैं सोचा था ऐसे ही समय शरीर छोड़ना चाहिए, नहीं कि जब वृंदावन धाम हो, भक्तों का संग हो, पुरुषोत्तम महीना हो या कार्तिक महीना हो, तो अल्टीमेटली भगवान के हाथ में, लेकिन हम अभिलाषा कर सकते कि अंत समय में कान में हरि नाम हो जाए, अंते नारायण स्मृति। कई बार अंत समय में बोलना मुश्किल होगा क्योंकि शरीर के अंग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन कम से कम सुन सके। आप जब वृंदावन वासियों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भगवान से प्रार्थना करिए, मोस्ट लाइकली मेरा नंबर पहले आने वाला है आप सबसे, तो कि अंत समय में वृंदावन धाम में शरीर छोड़ें, ब्रज रज में राधा कुंड और श्याम कुंड के जल से यमुना माई का आशीर्वाद लेकर, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर ब्रज धाम में कोई जन्म लेता है या ब्रज धाम में रहता है या ब्रज धाम में शरीर छोड़ता है, तीनों बहुत ग्लोरियस महान माने गए। तो महाराज अभी चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो नवदीप धाम है, नवदीप धाम और वृंदावन धाम एक ही है, गौरमंडल है भूमि जेबे जाने चिंतामणि, इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर वही भगवान गौर हरि हैं, वही श्याम सुंदर हैं, गोपीनाथ हैं, और नवदीप धाम में जो श्रीवास आंगन है तो रासस्थली से अभिन्न है। यहाँ पर जो रासस्थली है वंशीवट, जहाँ कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, वही जगह नवदीप धाम में है श्रीवास आंगन। तो श्रीवास आंगन में जब श्रीवास के पुत्र की मृत्यु हो गई, तो अपनी पत्नी को समझाया कि आप शोक मत करो, अगर आपके विलाप करने से, दुख करने से अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होता है, तो मैं अपने सिर में, अपने गले में एक पत्थर बांध के गंगा जी में छलांग लगा के अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। तो इसलिए उनके पत्नी थोड़ा शांत हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद महाप्रभु को पता चला, क्योंकि समाचार तो बहुत भक्तों में कभी छिपता नहीं, उस जमाने में तो कोई व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं थे, फिर भी समाचार तो फैलता ही था। तो महाप्रभु को पता चला तो महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बुलाया, श्रीवास किसी अमंगल है, कुछ अमंगल हुआ है? श्रीवास ठाकुर बोले, क्या अमंगल हो सकता है, जब आप साक्षात कीर्तन कर रहे हैं, सारे भक्तों का संग है, तो कुछ अमंगल नहीं है। फिर किसी और भक्त ने बताया कि इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। महाप्रभु ने पूछा, कितना समय पहले? तो श्रीवास ने बताया कि 6 घंटे हो गए। 6 घंटे हो गए आपके स्वयं के पुत्र की मृत्यु होने पे? आप जानते हैं, इस दुनिया में माता पिता के लिए पुत्र या पुत्री से बढ़कर प्रिय कोई नहीं होता। माता पिता अपने सब कुछ दे देते हैं एक बच्चे को बड़ा करने के लिए, और छोटे उम्र में अगर बच्चे की मृत्यु हो तो इसके बढ़कर शोक कोई नहीं हो सकता। महाप्रभु ने पूछा, आपने मुझे कुछ बताया नहीं, क्यों नहीं बताया? तब श्रीवास ठाकुर ने बताया, प्रभु मैं नहीं चाहता था कि आपका यह मधुर कीर्तन है इसमें कोई बाधा है। मतलब प्रिंसिपल क्या है कि लोक धर्म, परिवार धर्म, देश धर्म सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा, हरि नाम धर्म। भगवान के नाम कीर्तन में और कोई चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम 2 घंटे सवेरे जप करने बैठते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये 2 घंटे पूर्णतया कृष्ण नाम के लिए। हर भक्त को अनेक सेवाएँ होती हैं, ये तो स्वाभाविक है, और सब सेवाओं के विचार सब जप के समय ही आते हैं। सबसे अच्छे आइडियाज जपा के समय आते हैं, सबसे अच्छी प्लानिंग उसी समय होती है, कि माया देवी जानती है अगर इसका जप डिस्टर्ब हो गया तो ये भौतिक संसार में रहेगा, उसी समय माया देवी आक्रमण कर। लेकिन जैसे हम तृणावर्त की कहानी में सुनते हैं कि तृणावर्त भगवान को ऊपर ले गए और बाद में भगवान बहुत भारी बन गए, तृणावर्त ने प्रयास किया कि भगवान को फेंक दे, लेकिन भगवान उनकी गर्दन को बड़े टाइट पकड़ रखा था और अंत में तृणावर्त गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही माया देवी प्रयास करेगी कि हम कृष्ण के नाम को छोड़ दें, लेकिन हमें कृष्ण नाम छोड़ना नहीं है। बाधाएं सबको आती हैं, शायद ही 100 में 1000 में कोई एक भक्त होगा जिसको जप के समय दूसरे विचार नहीं आते हो। बस हमें परसिस्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जप में परसिस्टेंस, मतलब क्या बोलेंगे, शुभ लगे रहना बस। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं बहुत, क्योंकि मैं जब थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, मेरे को ज़्यादा सेवा आती नहीं है तो क्या करूँ तो लेकिन कई लोगों को लगता है मुझे बहुत टेस्ट है, मुझे टेस्ट बिल्कुल नहीं है नाम, लेकिन मैं क्यों नाम ज़्यादा जप करता हूँ, क्योंकि टेस्ट नहीं है, वो टेस्ट को जागृत करने के लिए कर। अगर आपके नाम में रुचि नहीं है इसका मतलब आप आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। नाम रुचि ये स्वास्थ्य का लक्षण है। अगर नाम रुचि बहुत अच्छी है इसका मतलब आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा है। इसके नाम रुचि नहीं है, जो नाम जप करने में कठिनाई हो रही है, मतलब आध्यात्मिक रूप से बीमार है। तो अगर नाम रुचि नहीं है तो दवाई के रूप में एक्स्ट्रा जप करना, ये नाम भव औषधि है, ये दवाई है। तो जिसको नाम में रुचि नहीं है तो ज़्यादा जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिससे रुचि जागृत हो। और स्पेशली पुरुषोत्तम महीने में भगवान की विशेष कृपा है कि हम सब वृंदावन धाम में हैं, तो नाम में रुचि जो है वो जागृत होती है बार बार जप करने से। तो किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि नाम में रुचि कैसे बनेगी, तो प्रभुपाद जी बोले, हाउ डस वन बिकम अ ड्रंकर्ड, कौन शराबी कैसे कोई व्यक्ति बनता है? यस, कोई महात्मा है जिनको अनुभव है यहाँ पर? होगा तो भी आप बोलिए मत प्रभुपाद जी का आंसर है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, Drink and you will become drunkard. बस पीते पीते नशा जागृत होता है, ऐसे chant and you will become good chanter. नाम में रुचि नहीं होने पे भी करते रहिए। जब भगवान देखेंगे कि ये भक्त इतना सिंसियर है, भगवान तो ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहे, वो तो हमारे परमात्मा के रूप में है, वो खाली हमारी परीक्षा ले रहे हैं कितना ज़्यादा हम नाम के प्रति आसक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब भगवान की कृपा हो तो एक क्षण में रुचि जागृत हो जाए। तन्मयता बहुत महत्वपूर्ण है नाम जप में। तो जो व्यक्तियों को नाम में रुचि नहीं है, जैसे मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, तो उनको ज़्यादा जप करना चाहिए, और जिनको रुचि है रूप गोस्वामी की तरह तो फिर करना ही चाहिए, जब रुचि है तो क्यों नहीं करना। जैसे किसी को अगर जॉन्डिस हो गया, उसको मीठी चीज़ अच्छी नहीं लगती तो दवाई के रूप में लेते हैं, और जिसको अच्छा लग रहा है तो स्वीट को ग्रहण कर सकते हैं। हमें रोज जप शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करनी चाहिए, जो हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि बताते हैं, एक बहुत सुंदर पुस्तक है हरिनाम चिंतामणि, जिसमें चैतन्य महाप्रभु और कौन है दूसरे महात्मा जो बात कर रहे हैं? हरिदास ठाकुर। और प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? हरिदास ठाकुर प्रश्न पूछ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जवाब दे रहे हैं। करेक्ट? नहीं, चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, हरिदास ठाकुर जवाब दे रहे हैं। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, हरिदास कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा? और हरिदास ठाकुर नाम के ऊपर पूरा गहराई में बता रहे। तो उसमें बहुत सुंदर प्रार्थना जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार मेरे पीछे बोले, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप जप के पहले बोल सकते हैं। कृपा कोरी नाम रूपे मोर जिवाया, निरंतर नाच प्रभु धरि तव पाया। कृपा करी नाम रूपे मोर जीवाया, निरंतर नाच प्रभु धरि तब पाया। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में पैर आपके चरणों को पकड़ के प्रार्थना करता हूँ। प्लीज भगवान, क्या करो? नाम रूपे मेरी जीवा पे नित्य करो। तो भगवान का नाम जो है भगवान से अभिन्न है। भगवान का अगर आप नाम लेते भी हैं तो जरूरी नहीं है कि भगवान प्रकट हों। अगर हम प्रार्थना पूर्वक लेते हैं, नम्रता से पुकारते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर बता रहे हैं इस श्लोक में, कृपा करी नाम रूपे मोर जीवाय निरंतर नाश प्रभु, हे प्रभु कृपा करके मेरी जीवा पर प्रकट होइए, तब भगवान प्रकट होते हैं। हम ऑर्डर नहीं कर सकते भगवान को। भगवान जैसे प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, कृष्णा इज नॉट योर फादर सर्वेंट, हिंदी में बोलते हैं तेरे बाप का नौकर नहीं है। तो प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते हैं, कृष्णा इज नॉट योर फादर सर्वेंट। कृष्ण जरूरी नहीं है कि प्रकट हो। अगर हम सच्चे दिल से नम्रता से भिक्षुक भाव में मांग रहे हैं तो भगवान की कृपा मिलती है। हरि नाम लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है एक भिक्षुक बनना, एक भिखारी बनना। भिखारी का क्या गुण आवश्यक है? अगर भिखारी आके डिमांड करता है, क्या चाहिए आपको? मैं भिखारी हूँ, मुझे भूख लगी है, चार परोठा गाजर हलवा और पकौड़ा दे देना, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। तो वो बोलेगा ठीक है, आप दूर चले जाओ, कहीं और मांग लो। लेकिन कोई नम्रता से आता है, बहुत भूख लगी है, कुछ रूखा सूखा कुछ भी हो दे दो, तो ऐसे नम्रता से प्रार्थना करते हैं तो कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी कुछ तो दे देगा उसको। अब भगवान तो कठोर नहीं है, वो तो परम कोमल है। कृष्ण का हृदय को कौन समझ सकता है, स्पेशली महाप्रभु के रूप में। वो इतने इतने सॉफ्ट है, इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं। वो तो बस हमारे मांगने की देरी है। हम तो कई बार नाम का सोला माला कर लेते हैं लेकिन पुकार नहीं रहे। मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, अगर हम एक बार भी पुकार लें, कृष्ण तोमार बोले यदि एक बार, चैतन्य लीला में हमारे गोपेंद्र प्रभु एक्सपर्ट हैं, उनसे मैंने सुना एक बार, सनातन शिक्षा में आता है ऐसे, कृष्ण तोमार है यदि बोले एक बार। कोई अगर एक बार भी बोलता है कृष्ण आई एम योर्स, आमी तोमार, तो कृष्ण तारा माया करे पार, कृष्ण उसको माया से पार कर देते। तो एक्चुअली भक्ति में बहुत ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर बुद्धि है और योग्यता है तो प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने दिया है। बस सिर्फ इतना भी अगर याद करें, कृष्ण बहुत महान है, मैं तुझसे सेवक हूँ, कृष्ण के सिवाय मेरा कोई नहीं है। हा हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत युत, करुणा करो ए बार, नरोतम दास को हे नाथे लिहो रंग पाए, तुम बिना के आछे आमार। हा हा प्रभु नंद सुत, हे नंद नंदन, हे गोपीनाथ श्याम सुंदर गिरिधारी, हे राधा माधव, करुणा करो, हे वृषभानु दुलारी दया करो। बस यही भाव है नाम जप में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। श्री सच्चिदानंदन महाराज ने एक अभी नई किताब छापी है 2 साल पहले, इसका नाम है लिविंग नेम। आपने देखा है किताब लिविंग नेम? बहुत अच्छी तरीके से वो समझाते हैं, कहते चैंटिंग में भावना इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं भी पुरुषोत्तम महीने में 16 की जगह एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, 32 कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब किताब पढ़ा, किताब को पढ़ने पता चला कि मैं तो सिर्फ संख्या बढ़ा रहा हूँ। संख्या बढ़ाना अच्छा है लेकिन साथ साथ क्वालिटी बढ़ाना, गुण बढ़ाना, उसकी जो उसके अंदर जो प्रार्थना की भाव के साथ नाम जप करना। जैसे हम सबको मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे कोई सिंपल हलवा हो खीर हो, लेकिन अगर रबड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। या अभी कल सवेरे द्वादशी के दिन यहाँ प्रसाद महोर में बांट रहे थे स्वीट, ये बहुत गाढ़ा स्वीट होता है, तो गाढ़ा खीर जो है वो टेस्ट में और ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें अगर किशमिश बादाम डाला जाए, प्रभु जी के मुख से पानी आने लग गया, यस, तो और भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही जब हम भगवान का नाम कैसे भी ले रहे हैं तो भगवान खुश हैं, लेकिन हम गहराई में लेते हैं पुकारने के भाव से। उसमें ये ड्राई फ्रूट डाल के त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्ण न अमानि न मानदि, ये चार गुणों के साथ। तो भगवान राधा श्याम सुंदर को हमारा जो नाम जप है वो बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है। हमारे नाम जप का उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए। हो सकता है हमें सफलता नहीं भी मिले, हो सकता है हमारा मन भाग भी रहा हो, फिर भी अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो कृष्ण प्रसन्न है। सचिंदन महाराज ये बताते हैं इस किताब में कि हमें नाम जप में ये पुकारने का भाव होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं लाइक ए चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर, तन्मयता के साथ, कृष्ण आमी तो तुमार तुमी तो आमार, मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ। तो शरणागति के भाव से जब नाम जप किया जाता है तो बहुत आसानी से सफलता मिल सकती है। आप बोलेंगे एक जगह तो बताया चैतन्य चरितामृत में कैसे भी भगवान का नाम लो, है ना, जैसे छठे स्कंद ने बताया सांकेतम परिहास्यम च, कोई संकेत में बोल दे, हंसते हुए बोल दे, निंदा करते हुए बोल दे तो भी लाभ मिलता है। लेकिन अभी यहाँ बताया गया कि बहुत गहराई में बोलना है, ये तो विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। भगवान का नाम तो बहुत शक्तिशाली है, किसी भी तरीके से लोग कुछ लाभ होगा, लेकिन अगर हम बहुत तन्मयता के साथ गहराई के भावना से पुकारते हैं, मैं एक भिक्षुक हूँ कृष्ण, प्लीज़ गिव मी मर्सी। गौरंगा तुमी मोरे दयाना छाड़ी, कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु से, कि मेरे पर दया करो, आपकी दया से ही मैं नाम ले सकता हूँ। वैष्णव के और गुरु की कृपा से ही हरि नाम प्रकट होते हैं, ठाकुर भक्ति विनोद बताते हैं ऐसे। एकाकी आमार नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने। एकाकी आमार नहीं, अकेले मेरे अंदर बल नहीं हरि नाम लेने की, आप कृपा करो। महाराज जिस किताब में लिखते हैं तो होली नेम इज नॉट अ पैशनेट अचीवमेंट, हरि नाम जो है जैसे उपलब्धि प्राप्त करना, जैसे मैंने बड़े कॉलेज में एडमिशन प्राप्त किया अमेरिका में, एक उपलब्धि है, किसी ने पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया उपलब्धि है, भारत रत्न अवार्ड मिला, किसी को नोबल प्राइज मिला, किसी ने क्या बोलते हैं उसको ओलंपिक रेस में कोई मेडल प्राप्त कर लिया, ये सब पैशनेट अचीवमेंट है जो अपने प्रयास से हो सकते हैं। लेकिन हरि नाम में सफलता ऐसे प्रयास से नहीं मिलती, हरि नाम की सफलता जो है वो भगवान की अहेतु की कृपा है जो एक कृतज्ञ और नम्र भक्त के हृदय में प्राप्त होती है। इसके अंदर नम्रता और कृतज्ञता, ह्यूमिलिटी और ग्रैटिट्यूड के भावना है, उसके अंदर हरि नाम का बीज बहुत जल्दी अंकुरित होगा, उसको नाम के रस का आस्वादन करने को अवसर मिलेगा। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर और एक भजन में ऐसा कहते हैं, कभी हबे बोलो से दिनाम अपराध घुचे शुद्ध नामे रुचि कृपा बल हबे हृदय संचार। वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण कब वो दिन आएगा जब मेरे अपराध दूर होंगे, तृणादि कही न कबे निज मानी, कब मैं अपने आप को घास के तिनके से छोटा मानूंगा, सहिष्णुता गुण हृदय त्यानी, कब मेरे अंदर सहनशीलता आएगी। तो मैं भी एक बहुत संघर्ष कर रहा हूँ चैंटिंग में, हम हर एक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे तो दो में से एक है, या तो आप परमहंस बन गए हैं या फिर आप ऑलरेडी माया से हार मान ली है। तो संघर्ष करना ये जीवन का लक्षण है। भौतिक जीवन में लोग संघर्ष करते हैं, और एक भक्त संघर्ष करते हैं माया की लड़ाई में। एक बार प्रभुपाद जी से एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि मैं चैंटिंग तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा मन भाग रहा है, सब दूसरे विचार आ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया, दिस विल गो ऑन, इट इज़ अ टग ऑफ वॉर, ये चलता रहेगा, क्योंकि ये टग ऑफ वॉर को क्या बोलते हैं हिंदी में, रसा कशी, यस। शिव कृष्ण प्रभु बहुत खेलते थे, उसको याद है सब नाम के बाल्य लीला। तो ये गेम होती है टग ऑफ वॉर में, एक तरफ तो आप पूरा जीत गए से लगता है, फिर वापस खींच लिए जाते हैं, ऐसे चलता रहेगा। एक दिन जब बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे लग रहा है वाह मधुरम 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 वाह मेरे को हजारों जीवा हो, दूसरे दिन तो हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, कितना दिन हो रहा हूँ। एक ही दिन, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, शायद आपको भी लागू होता होगा। तो भी ये करते रहना है। प्रभुपाद जी बोलते इन द एंड यू विल बी विक्टोरियस इफ यू जस्ट टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण। अंत में सफलता निश्चय है अगर हम कृष्णा का आश्रय लेते। भक्ति विनोद ठाकुर और एक लाइन में बोलते हैं, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पुड़िया से हरि नाम मंत्र लोई लो मागिया। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं मैं भगवान के चरणों में हरि नाम के चरणों में गिर के प्रार्थना करता हूँ, भगवान से भीख मांगते हैं हरि नाम के। और सच्चिदानंद महाराज भी ये पॉइंट दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं। वो बोलते हैं कि वन शुड प्रे टू द होली नेम, द नाम प्रभु, जैसे राधा श्याम सुंदर डीटी है, कृष्ण बलराम डीटी है, राधा गोपीनाथ डीटीज हैं, ऐसे नाम भी एक विग्रह है। नाम और नामी दोनों दयालु हैं, लेकिन नाम ज़्यादा दयालु हैं, क्योंकि नाम के लिए कोई नियम नहीं है। किसी भी समय आप ले सकते हैं, आप प्रसाद हॉल में भी ले सकते हैं, बलराम हॉल में भी ले सकते हैं, इवन आप शौचालय में हैं तो भी ले सकते हैं। महाराज जी अपनी किताब में बताते हैं कि एक बार वो प्रभुपाद एक कार्यक्रम में थे, प्रसाद के बाद प्रभुपाद अपने कमरे में चले गए विश्राम करने, और सचिंदर महाराज की इच्छा थी कि वो थोड़ा देखना चाहते थे प्रभुपाद अभी क्या करेंगे। तो उन्होंने दीवार को फांद के वो उस कमरे के पास गए, उनको पता था ऐसे पूछ के जाएंगे तो शायद नहीं मिलेगा उससे, तो दीवार छलांग ला के गए। अब प्रभुपाद सोए हुए थे और खिड़की से वो झांक के देखने लगे। प्रभुपाद की आंखें बंद थी लेकिन उनकी जीवा से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मतलब सोते अवस्था में भी प्रभुपाद जी हरि नाम ले रहे थे। हमारा उल्टा होता है, हरि नाम लेते हुए भी हम सो जाते हैं। तो एक बार एक भक्त ने पूछा कि कैसे हम सोते हुए भी हरि नाम लें, एक सीनियर डिवोटी से पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया पहले जागते हुए लो फिर सोते हुए सोचना। आपको लगेगा कि आप मैं क्यों हर समय हरि नाम के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं स्पिरिचुअल लाइफ में, बाकी सब खाली उसके लिए सपोर्ट करने के लिए, वो भी जरूरी है। बाकी चीज़ें अर्चे विग्रह की सेवा, मंदिर की सेवा, जो भी प्रचार करना, लेकिन अगर हमारा हरि नाम जब अच्छा हुआ तो बाकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और हरि नाम अच्छा नहीं हुआ तो बाकी सब करने के बाद भी हम फेलियर हो जाएंगे। ये सब कुछ हरि नाम में है। श्रीला प्रभुपाद एक बार जा रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए और एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आपकी सफलता की क्या कुंजी है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, बस प्रभुपाद बोले आई जस्ट चैंटेड हरे कृष्णा एंड एवरीथिंग बिकेम मैनिफेस्ट। ये दृढ़ विश्वास जो है भगवान के नाम में, ये महाभागवत का लक्षण है। प्रभुपाद के अंदर वो गहरा विश्वास था कि हरि नाम ही है जो कि जीवों के सारे दुखों को दूर कर सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा सा बोलना चाहता था, लेकिन आज की कथा जो चित्रकेतु महाराज ने बता रहा था, चित्रकेतु महाराज बहुत दुखी थे, और आप जानते हैं कथा कैसे नारद मुनि फिर से आए, और अब उन्होंने गुरु नारद मुनि के शब्दों को गंभीरता से ग्रहण किया। भौतिक दुख विपत्तियाँ जो हैं ये अग्नि के समान है, जैसे अभी कोई लोहे की या स्टील की कोई चीज़ है, अगर मुझे इसका आकार बदलना है तो पहले इसको गर्म करना होगा, जैसे आयरन के जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं पहले उसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद जब हथौड़ा पड़ता है तो बहुत जल्दी से अच्छा शेप हो जाता है। तो भौतिक दुनिया के विपत्ति जो समस्याएं आती हैं वो अग्नि के समान है, और वो विपत्ति के बाद जब हम साधु गुरु के वाक्य को सुनते हैं तो हमारे हृदय में वो बात बहुत गहराई के साथ प्रवेश करती है। और इस तरह से फिर चित्रकेतु महाराज साधना करने लगे और उनको सफलता मिल गई, और आज जो प्रसंग चल रहा है, सफलता मिलने के बाद वो भ्रमण कर रहे थे, उनको भगवान संकर्षण के दर्शन हो गए। देखिए कितने एडवांस डिवोटी हैं, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। और वो भ्रमण करते करते ये जो लीला जब आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत गहरी लीला है। इसमें देखोगे प्रभुपाद तात्पर्य में कुछ जगह पर बोलते हैं कि चित्रकेतु महाराज की गलती थी, और कुछ जगह ये भी बोलते हैं कि उनकी गलती नहीं थी। तो मैं इस तात्पर्य पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब चित्रकेतु महाराज ने देखा, आप प्रसंग जानते हैं, शिव जी बैठे हैं, कई लोग कथा सुन रहे हैं और पार्वती उनके गोद में है। तो चित्रकेतु महाराज ये देखकर उनके उनको हंसी आ गई। और प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि शिवजी पार्वती को मिल रहे हैं, ये तो गलत नहीं है, पति और पत्नी का मिलना तो गलत नहीं है। हाँ, तो भी चित्रकेतु शिवजी की इस मुद्रा को देखकर हंस पड़े, उनको नहीं हंसना चाहिए था। प्रभुपाद एक परपोट में ऐसा भी लिखते हैं और दूसरे में ये भी समझाते हैं कि एक्चुअली चित्रकेतु का कोई दोष नहीं था, फलतः उसे शापित होना पड़ा। और शाप के कारण, एक्चुअली ये शाप भी जो था भगवान का अरेंजमेंट था। वैसे चित्रकेतु महाराज को काफ़ी समय लगना था भगवान के धाम जाने में, लेकिन इस शाप मिलने के कारण वो असुर योनि में चले गए, लेकिन वहाँ उनकी प्रगति ज़्यादा हो गई। तो हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे उसी स्थिति में डालो जिसे जल्दी से जल्दी मैं आपके चरणों में पहुँचूँ। मुझे पैसेंजर गाड़ी से नहीं जाना है, एक्सप्रेस भी नहीं, मुझे दुरंतो जाना है ना, नॉन स्टॉप। आजकल दुरंतो भी एक दो जगह पर रुकते हैं। मुझे ऐसे स्पीड से जाना है कि इसी जन्म में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसी जन्म में मुझे भगवान का प्रेम मिल जाए। अगर मेरे बीमार होने से मेरी भक्ति बढ़ती है तो मुझे बीमार कर दो, अगर मेरे को अंधे होने से भक्ति बढ़ती है मुझे अंधा बना दो, मुझे करोड़पति बनने से भक्ति बढ़ती है मुझे करोड़पति बना दो। जो भी करो भगवान, मेरे आपके प्रति प्रेम हर क्षण हर दिन हर साल गहरा होता जाए, मैं इसी जन्म में आपके दर्शन कर पाऊँ, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकूँ। मैं एक श्री प्रभुपाद जी की एक प्रार्थना याद आ गई। प्रभुपाद ने एक सीनियर भक्त हैं देवानंद प्रभु, ये प्रभुपाद डिसाइपल देवानंद प्रभु, उसको उन्होंने लेटर लिखा 1968 में। प्रभुपाद जी कहते हैं, यू शुड प्रे टू कृष्णा, माय डियर लॉर्ड यू आर इन माय हार्ट, फ्रॉम यू कम्स नॉलेज रिमेंबरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस, प्लीज मेक मी रिमेंबर यू एंड नेवर फॉरगेट यू, इवन इफ यू थ्रो मी इनटू हेल आई डू नॉट माइंड एज लॉन्ग एज आई कैन ऑलवेज रिमेंबर यू एंड चैंट योर होली नेम। इसका हिंदी में अनुवाद है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, वही स्मरण शक्ति देते हैं, वही विस्मृति देते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे को आपके चरणों की स्मृति बढ़े, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अगर आप मुझे नरक भेजते हो मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन नरक में भी मैं आपको याद करता रहूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बाहर नरक में जाके आप कीर्तन करते हैं तो वो भी वैकुंठ हो जाएगा। और कई सारे जो अंधतमिश्र कुंभीपाक सब जीवों का उद्धार हो जाएगा। इस्कॉन कुंभीपाक इस्कॉन महारौरव, यू नो, जहाँ भी जाओ कीर्तन करो, बस वही वैकुंठ बन जाए। प्रभुपाद जी जहाँ पे बोले ऐसे कि इवन इफ यू गो टू हेल यू चैंट द होली नेम दैट विल बिकम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज थोड़ा कमेंट किए, ऐसे बोले कि शिवजी तो धर्म के गुरु हैं, हाँ सब कुछ व्याख्यान कर रहे हैं और ये कैसा व्यवहार है, हाँ ये वैदिक नियमों को जानने वाले हैं, तो ये उनका ठीक नहीं है इस तरह से अपने पत्नी के साथ बैठना। तो श्रील प्रभुपाद एक और चीज़ यहाँ बताते हैं तात्पर्य में, मैं चाहता हूँ कि हम इस तात्पर्य पर ज़्यादा फोकस करें। जो चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य है कि यद्यपि चित्रकेतु ने शिवजी की आलोचना की, निंदा की, दक्ष की भांति उनका अपमान नहीं किया था। ये फर्क है, दक्ष ने भी शिवजी की निंदा की, लेकिन दक्ष की निंदा में ईर्ष्या की भाव था, वो सह नहीं कर पा रहा था, हाँ कि मेरा शिवजी ने मेरे लिए खड़े नहीं हुए, वो पर्सनल एजेंडा हो गया था। लेकिन चित्रकेतु महाराज के मन में कोई ईर्ष्या की भाव नहीं थी, मतलब एक ही वाक्य है किस भाव से किया जाता है उसके अनुसार उसका अलग अलग फल होता है। कभी कभी कोई सीनियर भक्त या गुरु किसी भक्त को दोष दिखाते हैं कि देखो ये आपका दोष है आप सुधारो, लेकिन वो निंदा के भाव से नहीं होता। और दूसरा कोई व्यक्ति उसी दोष को बताते हैं वो निंदा के भाव से होता है तो वैष्णव अपराध बन जाता है। तो दक्ष ने शिवजी को नगण्य मान लिया था, लेकिन चित्रकेतु महाराज जो आश्चर्य के भाव से बोल रहे थे, हाँ तो बोलने लगे साधारण में तो व्यक्ति अपने पत्नी को आलिंगन करते हैं, लेकिन कोई पब्लिक स्थान में ऐसा नहीं होता। और चित्रकेतु महाराज, अभी देखिए चित्रकेतु महाराज इस पर्पट में प्रभुपाद जी बोलते हैं चित्रकेतु महाराज शिवजी की प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं महाव्रत धर, मतलब शिवजी जो एक्चुअली ब्रह्मचारी हैं, हालांकि विवाहित हैं, अपने पत्नी को आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन उनका चरित्र शुद्ध है। शिवजी की गणना जो है योगियों में किया जा रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि शिवजी कितने महान हैं कि वो इस स्थिति में रहकर भी वो प्रभावित नहीं हो रहे। अतः चित्रकेतु का कोई अपराध नहीं था, ये सिर्फ उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया। मैं एज इट इज खाली पर्पट को पढ़ रहा हूँ, हू बहू, यू नो, वर्ड टू वर्ड। जैसे वो कहानी है कि एक बार गोपियाँ जो हैं उनको जाना होता है नदी पार करने के लिए, तो भगवान कृष्ण से पूछते हैं नदी कैसे पार करें, दुर्वासा मुनि के लिए भोग ले जाना है। भगवान बोलते हैं कि आप बोलो यमुना को अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। तो बोलते हैं अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दो, तुरंत वो रास्ता मिल जाता है। और दुर्वासा मुनि को सब खिलाते हैं और खिलाने के बाद सोचते हैं वापस कैसे जाएंगे। दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि आप बोलो कि अगर दुर्वासा मुनि ने कुछ भी नहीं खाया है तो रास्ता दे दो, तो तुरंत फिर रास्ता हो जाता है। मतलब कृष्ण हजारों गोपियों के साथ नृत्य भी कर रहे हैं लेकिन उनके मन में तो कोई भौतिक विकार है ही नहीं। ऐसे शिवजी को यहाँ महाधीर बोला गया, धीर, धीर का एग्जाम्पल शिवजी हैं जो कभी डिस्टर्ब नहीं होते। फिर आप बोलोगे मोहिनी मूर्ति में कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं शिवजी, लेकिन ये भगवान की विशेष लीला थी, वो स्पेशल शिव अरेंज किया था खाली शिवजी के लिए। कि भगवान दिखाना चाहते थे कि देखो अगर शिवजी भी प्रभावित हो जाते हैं तो हम जैसे साधारण जीव किस खेत की मूली हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। या ब्रह्मा भी मोहन लीला से भी हम सीखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। कई बार मध्व संप्रदाय में इस लीला को स्वीकार नहीं करते, ब्रह्मा जी हमारे गुरु हैं वो कैसे मोहित हो सकते हैं। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण चाहते थे कि ब्रह्मा जी मोहित हों, तो ब्रह्मा जी ने इस रोल को स्वीकार किया। और दूसरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि चित्रकेतु के वचन सुनकर शिवजी हंसे, शिवजी को बुरा नहीं लगा, शिवजी चुप रहे और बाकी किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मतलब इससे पता चलता है शिवजी महान हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं हुए। जैसे गौर लीला में हरिदास ठाकुर की कहानी है, एक बार एक व्यक्ति बोले हरिदास क्या तुम जोर से हरे कृष्णा बोलते हो, क्या धीरे से नहीं ले सकते, अभी चतुर्मास से चल रहा है, पता नहीं आपको भगवान सोए हुए हैं, जोर से नाम लोगे तो फिर भगवान गुस्से हो जाएंगे, बरसात नहीं होगी, चावल का दाम बढ़ जाएगा, आपकी पिटाई करूँगा। तो हरिदास ठाकुर बहुत, कोई बात नहीं, आप समझिए कि जोर से इसलिए लेते हैं क्योंकि सबको लाभ मिले, उच्च शत गुण भवेत। तो वो और क्रोध होकर बोलते हैं अगर तुम जो बोल रहे हो गलत है तुम्हारा नाक काट दूंगा। और हरिदास ठाकुर मुस्कुरा लेते हैं, कुछ बोलते नहीं, लेकिन जिसने ये बोला था उसी का नाक कट जाता। तो उसमें तात्पर्य बताया गया कि जो महान भक्त होते हैं उनको बुरा ही नहीं लगता। तीन प्रकार के भक्त हैं, एक है बहुत लो लेवल पर जो मेरी तरह कोई बुरा बोले तो उसको तुरंत बुरा लग जाता है और रिएक्ट करता है, मतलब ऐसा क्यों बोला, तुम कौन होते हो, हाँ तुम ये क्या समझते हो, मैं सीनियर डिवोटी हूँ, ऐसे बुरा लग जाता है। दूसरे लेवल पर डिवोटी इसको बुरा लगता है लेकिन वो सहन कर लेते, सोचता है कि शास्त्रों में लिखा है सहन करना चाहिए और वैसे भी मेरा भी अपमान हो जाएगा अगर मैं भी बोलूँगा तो। और थर्ड हाईएस्ट लेवल पर डिवोटी उसको बुरा लगता ही नहीं है, हरिदास ठाकुर अपमान लगा ही नहीं, सच तो भगवान की कृपा है जो भी हो। तो शिवजी भी बिल्कुल आलोचना करने पर भी बुरा नहीं मान, शिवजी अपना बाह्य व्यवहार बंद कर दें। ताकि एक और कारण है क्यों चित्रकेतु महाराज कॉमेंट कर रहे थे, चित्रकेतु महाराज सोच रहे थे कि शिवजी के इस व्यवहार को देखकर कोई आलोचना नहीं करे, शिवजी का अपमान नहीं हो, इसीलिए चित्रकेतु महाराज ने पॉइंट किया। यदि कोई ये सोचता है कि भगवान विष्णु ही पूर्ण हैं और दूसरे जो देवता हैं अनुचित कृत्य कर रहे हैं तो वो भी अपराधी है, शिवजी को भगवान के समान मानना वो भी एक अपराध है, लेकिन साथ साथ शिवजी को साधारण देवता मानना वो भी एक अपराध है। तो शिवजी हंसे नहीं, हाँ वो समझ गए और बाकी लोग भी शांत रहे कि जब हमारे बॉस ही कुछ नहीं बोल रहे तो हम क्यों बोलें, सब शांत रहे। उनके वचन, एक्चुअली प्रभुपाद जी एक और पॉइंट है बताते हैं कि उनके जो चित्रकेतु महाराज के जो शब्द थे वो तनिक भी अच्छे लगने वाले नहीं थे, पार्वती को अच्छे नहीं लगे। तो पार्वती ने बहुत गुस्से में आकर कहा। अब प्रभुपाद जी दूसरा पाद बताते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं तेजो यसम न दोषयेत, ये चित्रकेतु महाराज को शिवजी का अपमान नहीं करना चाहिए था। ये दो परपट पहले प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज करेक्ट थे, लेकिन ये भी बता रहे हैं, मतलब उसी कहानी को अलग अलग एंगल से समझा जा सकता है। उनको चाहिए था कि आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्यों, सामाजिक दृष्टि से शिवजी गलत कर रहे थे, लेकिन शिवजी जो कई बार भगवान शिव बोलते हैं, तो भगवान के स्तर पर हैं, इसलिए उनकी क्रियाओं को साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न भुजाए, जैसे सूर्य जो है कहीं पर मल मूत्र भी बिखरा हुआ है, सूर्य की किरण पड़ती है तो वो शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही महान व्यक्ति को कभी आलोचना नहीं की जाती। और दूसरा पॉइंट प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शिवजी क्या सिखा रहे हैं, त्रिनादपि सुनीषे न तरोरपि सहिष्णु। पार्वती बहुत गुस्से से बोलने लगी, क्या हम जैसे निर्लज व्यक्ति को दंड देने के लिए तुम्हें किसने शक्ति दी है, क्या ये शासक किसने बनाया है, हाँ या यही तुम सबके स्वामी बन रहे हो, ऐसा लग रहा है ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोल रहे, भृगु मुनि कुछ नहीं बोल रहे, नारद मुनि कुछ नहीं बोल रहे, हाँ मनु और कपिल ये भी नियम को भूल गए हैं। यह चित्रकेतु घोर निकृष्ट व्यक्ति है, इसने शिव जी का तिरस्कार करके देवताओं का अपमान किया है। भगवान शिव साक्षात धर्म है, सारे जगत के गुरु बनने के लायक है, इसलिए चित्रकेतु को शाप दिया जाना चाहिए। यह व्यक्ति भगवान के चरण कमल के निकट जिनकी उपासना कभी साधु पुरुष करते हैं जाने के योग्य नहीं है, ये घमंडी है चित्रकेतु। हे दुर्बुद्धे बेटे, उनको अपना बेटा कहकर बोलते हैं कि तुम असुर योनि में जन्म लो, क्योंकि तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, जिससे तुम्हारे अंदर फिर कभी अपराध करने का भाव नहीं आए। तो प्रभुपाद जी नेक्स्ट पर्पट में बोलते हैं चित्रकेतु का रिस्पॉन्स कैसा था। चित्रकेतु बहुत शांत रहे और बोले, माता प्रणाम, मैं आपके दिए हुए शाप को स्वीकार करता हूँ, मुझे शाप की परवाह नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख स्वीकार करता है। तो चित्रकेतु महाराज ने क्या सोचा, ये पार्वती शाप दे रही है इससे मैं असुर नहीं बन रहा, मेरे भाग्य में लिखा ही था तो होना ही था, जैसे मेरे भाग्य में लिखा था कि मुझे खीर मिलना ही है तो मिलेगा ही, और नहीं लिखा है तो मैं जल्दी भी जाऊँगा, छिपा के भी रखूँगा तो कोई और ले लेगा, है ना। तो जो भाग्य में लिखा है, कोई अच्छा दे तो भी धन्यवाद भगवान कृपा है, कोई बुरा करे वो भी भगवान की कृपा है। और प्रभुपाद यहाँ पे बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमान, चित्रकेतु महाराज का रिस्पॉन्स है। और तो उन्होंने चित्रकेतु महाराज पार्वती को प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि सब व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। हाँ, और तब ये आज का श्लोक आता है, जब शिवजी, आज का श्लोक जो शिवजी बोल रहे हैं, हे सुंदरी, प्रभुपाद जी बोलते हैं शिवजी पार्वती को सुंदरी क्यों बोल रहे हैं, अरे तुम तो खाली शरीर से सुंदर हो, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं चित्रकेतु जैसे, वो चरित्र से सुंदर हैं, तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। शिवजी पार्वती को बोल रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज जैसे भक्त शरीर से नहीं, कैरेक्टर से सुंदर हैं, और देखो तुमने उनका अपमान किया और उन्होंने आपको माता कहकर तुम्हारा आदर किया। शिवजी ने आगे कहा कि परमेश्वर के कार्य महान हैं और उनके भक्त भी महान हैं, त्रिनादपि सुनीचेन। और फिर ये श्लोक आता है, नारायण परा सर्वे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसमें कि पार्वती ने पूछा होगा कि भक्त इतने महान बने कैसे, तो उसके जवाब में बताया गया नारायण परा, क्योंकि वो नारायण भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो भगवान नारायण की या कृष्ण की भक्ति करता है उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं। एक बार एक डिवोटी ने प्रश्न पूछा, ये नम्रता और सहनशीलता जो चित्रकेतु महाराज दिखा रहे हैं वो कैसे हमारे अंदर आएगा, तो उसके जवाब में प्रभुपाद जी बोलते हैं, जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा ऑल गुड क्वालिटीज विल डेवलप। अगर कोई सच्चे दिल से प्रार्थना पूर्वक भगवान को पुकारते हुए हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो व्यक्ति के अंदर ये सब गुण आ जाते हैं। जो सेकेंड लाइन में लिखा है, लाइन चले गए यहाँ पे, सेकेंड लाइन में लिखा है, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, अभी तक बेल बजा नहीं स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, मतलब स्वर्ग और नरक और मुक्ति तीनों को समान समझना। क्यों, अगर स्वर्ग में है तो भी हरि नाम लो, नरक में है तो भी हरि नाम लो, और मुक्ति मिले तो भी हरि नाम। प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं, कैवल्य नरकाये त्रिदश पूर आकाश पुष्पये, इसको चैतन्य महाप्रभु कृपा मिल जाए उसको कैवल्य भगवान में लीन होना वो नरक के समान लगता है, क्योंकि उसको लगता है मुझे भगवान की सेवा करनी, सालों के सामीप्य ये मुक्ति भी भक्त नहीं चाहते, बस भगवान की सेवा करना चाहते। तो चैतन्य महाप्रभु का कंक्लूजन बताते हैं जो हमारे हृदय में रहना चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। मतलब मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, बस भगवान की सेवा चाहिए। तो ये कॉन्शियसनेस है नारायणा परा कृष्ण परायण, जो नारायण परायण है कृष्ण परायण है वो हर स्थिति में सुखी रहते हैं। वो जानते हैं कि कृष्ण का संग मेरे साथ में रहे हरि नाम के रूप में। और भगवान अपने आप बताते हैं यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरे भक्त गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्रभुपाद लिखते हैं सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज को भगवान ने स्पर्श किया और सिर पर स्पर्श करते ही उसके सारे अशुद्धि चले गए। वैसे जब हम हरि नाम लेते हैं तो जीवा पर भगवान नित्य करते हैं और सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। अघासुर बड़ा भयानक राक्षस था, लेकिन भगवान उसके मुख में आए और उसने भगवान को मारने का प्रयास किया, अंत में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो शुद्ध हो गया। ऐसे ही हम भी, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, अगर हमारे अंदर अघासुर की तरह भी दुर्गुण हो, लेकिन जीवा पर अगर हम भगवान को रखें हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, तो हम अंदर से और बाहर से शुद्ध हो सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में मैं सब भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझे हरि नाम जप करने का सौभाग्य मिले वृंदावन धाम में। आशीर्वाद चाहता हूँ सब भक्तों का, आप भी अपने अपने तरीके से ज़्यादा नाम जप करें। ऑलरेडी आधा महीना तो हो गया, नहीं अभी कितने दिन और बचे हैं, 16 दिन और 18 दिन और। जय गोपेंद्र प्रभु कुछ कमेंट करेंगे। गोपेंद्र प्रभु कोई प्रश्न है या कोई टीका। जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। चित्रकेतु महाराज की जय।